आज हम पूज्य गुरुदेव के दो बहुत ही खास विचारों, स्वाध्याय और सत्संग पर एक नजर डालेंगे। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ये दो आसान सी आदतें सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज तक को बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए इसके तीन मुख्य पहलू क्या हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारी संगत का असर। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं ना, धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अच्छे और समझदार लोगों के साथ रहना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, यह हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है स्वाध्याय। अब सवाल ये उठता है कि हम उन महान लोगों से कैसे सीखें जो आज हमारे बीच नहीं है। तो इसका जवाब है स्वाध्याय, मतलब अच्छी पुस्तकें पढ़ना। जब हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो एक तरह से हम सीधे उनके विचारों से जुड़ जाते हैं। ये भी तो एक तरह का सत्संग ही हुआ है ना, खुद के साथ। और तीसरी और आखिरी बात, मन की रोजाना सफाई। सोचिए, हम अपना घर तो रोज साफ करते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारे मन पर भी दुनिया की नेगेटिव बातों की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने के लिए रोज थोड़ा सत्संग और स्वाध्याय बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मन एकदम साफ रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मन से बुरे ख्यालों को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अच्छे ख्यालों से भर देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कटोरे में पानी भरते जाओ तो हवा अपने आप बाहर निकल जाती है।
आज की इस गहन चर्चा का केंद्र है स्वाध्याय और सत्संग।
जी,
ये दो शब्द हमने कई बार सुने हैं, पर आज हम इनकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि पूज्य गुरुदेव के विचारों का आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य हमेशा से बहुत व्यवहारिक रहा है कि कैसे इन विचारों से हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं।
चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर श्लोक से करते हैं, चोदयत तेव सत्संगो धियमस्य फलम महत। मतलब सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ संग करना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है।
हाँ, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। ये सिर्फ अच्छी आदतें सीखने के बारे में नहीं है।
अच्छा
जी, आज की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो अनजाने में ही हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार को, उनकी आदतों को, यहाँ तक कि उनके सोचने के तरीके को भी, मतलब कॉपी करते हैं।
तो पूज्य गुरुदेव जब सत्संग की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से 21वीं सदी के बायोहैकिंग की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए सही माहौल में रखना।
ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें।
हाँ, असर तो होता ही है।
लेकिन एक व्यवहारिक सवाल उठता है, आजकल की जिंदगी में हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिल पाना मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार हम अकेले होते हैं, तो क्या ऐसे में कोई रास्ता है?
बिल्कुल, और यहीं पर पूज्य गुरुदेव का दूसरा सिद्धांत स्वाध्याय काम आता है।
स्वाध्याय यानी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन।
जी, इसके जरिए हम उन महापुरुषों से भी जुड़ सकते हैं जो अब हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है।
पर क्या एक पुस्तक सच में एक जीवित व्यक्ति की जगह ले सकती है? मतलब जो एक ऊर्जा महसूस होती है किसी के साथ बैठकर, क्या वो एक पुस्तक से मिल सकती है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊर्जा का स्तर शायद वही ना हो, लेकिन पुस्तकें आपको किसी व्यक्ति के विचारों का सबसे शुद्ध रूप देती हैं,
बिना किसी मिलावट के।
हाँ, आप हजारों साल पहले के किसी विचारक के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। ये एक अलग तरह का सत्संग है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और पूज्य गुरुदेव इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं, आत्म सत्संग।
आत्म सत्संग यानी एकांत में बैठकर चिंतन करना।
जी, अकेले बैठकर अपने ही अच्छे विचारों के साथ संवाद करना, ये भी उतना ही जरूरी है।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहाड़ों में जाकर ध्यान करना है। ये तो ये भी हो सकता है कि 10 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके बस ये सोचा जाए कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है।
बिल्कुल, कम्यूट करते वक्त या सुबह की चाय के साथ बस 5-10 मिनट का सचेत प्रयास, यही आज के जमाने का आत्म सत्संग है।
यह एक बहुत ही व्यावहारिक तुलना की गई है।
हाँ, सफाई वाली।
हमारे मन पर भी दुनिया के बुरे माहौल का असर रोज पड़ता है,
और इस मानसिक मैल को साफ करने के लिए सत्संग और स्वाध्याय एक बुहारी यानी झाड़ू की तरह है।
शास्त्रों में तो इसे नित्य कर्म यानी डेली रूटीन का हिस्सा बताया गया है।
जी, बल्कि शतपथ ब्राह्मण में एक बहुत सख्त बात कही गई है
कि जिस दिन स्वाध्याय नहीं होता उस दिन मनुष्य की स्थिति शूद्र जैसी हो जाती है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लगती है।
हाँ, लेकिन यहाँ शूद्र शब्द को जाति के संदर्भ में नहीं बल्कि अज्ञानी या विवेकहीन व्यक्ति के तौर पर समझना जरूरी है।
अच्छा।
उस समय का संदर्भ ये था कि ज्ञान के बिना व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, वो अपने कर्मों के असर को समझ नहीं पाता। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए।
ये समझना बहुत जरूरी था। तो ठीक है, मन की सफाई रोज करनी है, पर कैसे? एक और उदाहरण है कि जैसे एक कटोरे में पानी भरने से हवा निकल जाती है, वैसे ही मन को अच्छे विचारों से भर दो
तो बुरे विचार खुद ब खुद दूर हो जाते हैं।
पर क्या ये वाकई इतना आसान है? कई बार चिंता और नकारात्मकता इतनी हावी होती है कि कुछ भी अच्छा सोचने या पढ़ने का मन ही नहीं करता।
ये सच है, ये हमेशा आसान नहीं होता। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। शुरुआत में शायद 2 मिनट ही हो पाए, लेकिन वो 2 मिनट का सचेत प्रयास भी उस नकारात्मक चक्र को तोड़ता है। आप देखिए, आज हम इन्फॉर्मेशन से घिरे हैं, ज्ञान से नहीं।
सही बात है, हमारी सोशल मीडिया फीड एक तरह का अनचाहा कुसंग है।
बिल्कुल, जो बिना पूछे हमारे दिमाग में कचरा भर रही है। स्वाध्याय और सत्संग उस कचरे को साफ करने का तरीका है। ये एक मेंटल डाइट की तरह है।
मेंटल डाइट, ये बहुत अच्छा शब्द है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि स्वाध्याय और सत्संग केवल एक विकल्प नहीं,
बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए एक आवश्यक दैनिक क्रिया है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। पूज्य गुरुदेव के विचार ये बताते हैं कि बिना सचेत प्रयास के हमारी मानसिक स्थिति हर दिन खराब होती है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम हर दिन अपने मानसिक भोजन का चुनाव सक्रिय रूप से कर रहे हैं,
या दुनिया के मैल को अनजाने में अपने अंदर जमा होने दे रहे हैं?
ये तो सच में सोचने वाली बात है।
नमस्ते, आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों की गहराई में उतरेंगे। हम उनके लिखे साहित्य स्वाध्याय और सत्संग के पहले अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका शीर्षक भी दिलचस्प बात है कि स्वाध्याय और सत्संग ही है। इस चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि ये दो सिद्धांत किस तरह, मतलब व्यक्तित्व को विकसित करने, परिवार को सुसंस्कृत बनाने और समाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूँ। और देखिए, ये अध्याय गायत्री के 22वें अक्षर चो से शुरू होता है, जो सत्संग और स्वाध्याय के लाभों को दिखाता है। तो समझिए, यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है।
अच्छा, चो से, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक से शुरू होता है, चोदयत्येव सत्संगो धियमस्य फलम महत् स्वमतो सज्जे विद्वान कुर्यात् पर्यावृतम सदा। जिसका मतलब है, सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए सदैव सत्पुरुषों का संग करें। सत्संग का फल महान है। ये तो बहुत सीधी बात लगती है।
हाँ, सीधी है पर बहुत गहरी है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि पूज्य गुरुदेव सीधे तौर पर हमारे वातावरण के प्रभाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क पर उसके आसपास के वातावरण का, मतलब जगह, परिस्थिति और व्यक्तियों का बहुत गहरा और निश्चित प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक सत्य की तरह है।
और इसी आधार पर वो एक व्यावहारिक समाधान भी देते हैं कि जो लोग अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें खुद को एक अच्छे माहौल में रखना चाहिए। उन्हें अच्छे लोगों से मित्रता रखनी चाहिए। व्यापार संबंध, यहाँ तक कि सलाह और मार्गदर्शन भी उन्हीं से लेना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है।
बिल्कुल,
लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या हो अगर अच्छे लोगों का प्रत्यक्ष साथ मिलना संभव ही ना हो? कई बार ऐसा होता है।
हाँ, सही सवाल है, और पूज्य गुरुदेव इसका भी समाधान देते हैं। और वो समाधान है स्वाध्याय, यानी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन।
स्वाध्याय,
हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वो कहते हैं कि जिन जीवित या स्वर्गीय महापुरुषों से आप सीधे नहीं मिल सकते, उनकी पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एक तरह से स्वाध्याय जो है वो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देता है और हमें सीधे महान विचारों से जोड़ता है।
अरे वाह, मतलब ये तो कमाल का आइडिया है कि आप हजारों साल पहले के किसी ऋषि के साथ भी सत्संग कर सकते हैं, बस एक पुस्तक के जरिए।
और इसमें एक और परत जोड़ी गई है, आत्म सत्संग, यानी एकांत में बैठकर अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करना, अपने मस्तिष्क को सही दिशा में लगाए रखना भी, वो भी एक तरह का सत्संगी है।
बिल्कुल सही। तो अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सत्संग केवल भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, ये एक वैचारिक संगति है, चाहे वो जीवित व्यक्तियों से हो, पुस्तकों के माध्यम से महापुरुषों से, या फिर अपने ही शुद्ध विचारों से हो।
ठीक है, तो अब पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपमा का उपयोग करते हैं, जैसे शरीर, वस्त्र, मकान और बर्तन, ये रोजाना मैले होते हैं और उन्हें रोज साफ करना पड़ता है, वैसे ही हमारा मन भी है।
बिल्कुल, संसार के बुरे वातावरण का जो मैल है और जो कुप्रभाव है वो हमारे मन पर लगातार पड़ता ही रहता है, और इसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय को झाड़ू की तरह बताया गया है, और शास्त्रों में इसे नित्य कर्म कहा गया है।
नित्य कर्म?
हाँ, मतलब रोज करने वाला जरूरी काम।
ये शब्द बहुत वजनदार है, नित्य कर्म। यहाँ तक के शतपथ ब्राह्मण का एक जिक्र भी है जिसमें कहा गया है कि जिस दिन स्वाध्याय न किया जाए उस दिन मनुष्य की स्थिति शूद्र जैसी हो जाती है। ये आज के समय में थोड़ा कठोर लग सकता है, इसका असल मतलब क्या है?
इसे सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ शूद्र शब्द का जाति से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था को दिखाता है। इसका भाव ये है कि जिस दिन हम अपने मन को अच्छे विचारों का पोषण नहीं देते उस दिन हमारी चेतना का स्तर गिर जाता है, हम आलस्य, अज्ञान, इन सब वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं। तो ये एक चेतावनी है कि इसमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, ये कोई शौक नहीं है बल्कि एक जरूरत है।
एक जरूरत?
हाँ।
तो ये सब सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, मन की सफाई होती कैसे है?
और इसका जवाब भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से दिया गया है।
हाँ, ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया कि जैसे किसी कटोरे में पानी भरने से उसमें पहले से भरी हवा अपने आप निकल जाती है, वैसे ही अच्छे विचार धारण करने से बुरे विचार अपने आप दूर हो जाते हैं, मतलब लड़ना नहीं है उनसे।
लड़ना ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ बुरे विचारों को हटाने पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, हमें सक्रिय रूप से, मतलब जानबूझकर, अच्छे विचारों को मन में भरना होगा, और स्वाध्याय और सत्संग ही वे माध्यम हैं जो हमें वे अच्छे विचार यानी वो पानी प्रदान करते हैं जो नकारात्मकता की हवा को बाहर निकाल देता है।
वाह, तो मतलब हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, बस दिया जलाना है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर कुविचारों जैसे सत्यानाशी शत्रुओं से पीछा छुड़ाना है और कल्याणकारी सद्विचारों को अपनाना है तो स्वाध्याय और सत्संग के लिए लगातार कोशिश करके समय निकालना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है।
बिल्कुल, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है।
तो आज की इस चर्चा से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। पहला, हमारी बुद्धि और व्यक्तित्व पर हमारे संग का, हमारी संगत का गहरा असर होता है,
बहुत गहरा।
दूसरा, स्वाध्याय या अच्छी पुस्तकों का अध्ययन महान लोगों के विचारों से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है।
हाँ, सबसे आसान और शक्तिशाली।
और तीसरा, कि मन की शुद्धि के लिए सत्संग और स्वाध्याय एक दैनिक आवश्यकता है, एक नित्य कर्म है जो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का काम करते हैं।
और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही व्यावहारिक उपकरण है, बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसा कि पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था, एक सुविकसित व्यक्तित्व ही एक सुसंस्कृत परिवार और सुसंपन्न समाज की नींव रख सकता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, जाते जाते एक विचार, अगर हमारे विचार हमारे साथ और हमारे साहित्य से बनते हैं और यही विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो आज अपनी संगति या अपने पढ़ने की सामग्री में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो अपने लिए एक नई और बेहतर वास्तविकता का निर्माण शुरू कर सके।